इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तू बहुत बड़ा इज्जतदार बना हुआ था ना, गालिब बना हुआ था, तू अपने आप को बड़ी चीज समझता था ना। अल्लाह ताला ऐसे खुराक से और ऐसे अजाबों से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर शीशे का कोई ऐसा गोला, जैसे ये खोपड़ी है ना, ऐसा कोई गोला आसमान से जमीन की तरफ फेंका जाए, तो आसमान से जमीन के दरमियान 500 साल के रास्ता है, मसाफत है, डिस्टेंस है, तो गोला रात होने से पहले पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, यानी 500 साल का फासला 10-12 घंटे में तय कर लेगा, यही मतलब हुआ ना। लेकिन अगर जहन्नुम की जंजीर के सिरे से, जो चेन है जिनके अंदर इनको चेन किया जाएगा, उसके एक सिरे से एक गोला फेंका जाए, तो उसकी इंतहा तक, गहराई तक पहुंचने में इसको 40 साल लगेंगे। यानी वहां से जो जंजीरें लटकी होंगी दोजख में, जिनसे इनको लटकाया जाएगा, चेन किया जाएगा, ने कितना ज्यादा फासला होगा, दोजख की गहराई आसमान और जमीन की मसाफत से हजारों गुना ज्यादा है इसका मतलब। ये तिर्मिजी की हदीस है। कहेंगे कहाँ है वो जिनको तुम शरीक ठहराते थे, मिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ छोड़ के भागते थे उनकी तरफ, वो कहाँ है? कालू, वो जवाब देंगे। अब वो ये कब उनसे पूछा जा रहा है, जिस वक्त वो इतनी सख्त मुसीबत में है। कहेंगे दल्लू अन्ना, वो गुम हो गए हमसे, हमसे वो गायब हो गए, हमको कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो कहाँ नजर आएंगे, वो तो खुद पता नहीं कहाँ पड़े होंगे, वो हमसे खो गए, हमने जो इनसे उम्मीदें लगाई हुई थी वो तो पूरी हो ही नहीं सकी। बल लम नकुन नदउ मिन कबलु शैया, बल्कि हम तो पुकारा करते थे इससे पहले, नहीं हम पुकारा करते थे इससे पहले कुछ भी। यानी शिर्क का ही एक तो मतलब ये हो सकता है, शिर्क का ही इनकार कर देंगे कि हम तो शिर्क करते ही नहीं थे। दूसरा इसका मतलब क्या है कि हम किसी ऐसी चीज की इबादत नहीं करते थे जो हमें फायदा पहुंचा सकती या हम मेरी तकलीफ को दूर कर सकती, हमारी तो सारी इबादत ही बेफायदा थी, उसकी कोई हकीकत ही नहीं थी, हम तो पता नहीं क्या करते रहे। तो पहला माना क्या हुआ कि एक तो वो ये भी हो सकता है कि वो शिर्क का इनकार करते हैं, जाहिर है वो जिस कदर तकलीफ और जितनी अजियत के अंदर हैं, उसके बाद तो इंसान की वैसे ही हाफजा ही नहीं रहता, उसका हाफजा क्या रहेगा, उसका दिमाग क्या रहेगा, वो तो इतना माऊफ हो चुका होगा, उसको तो कोई बात समझ ही नहीं आएगी। कभी कहेंगे कि हाँ वो वाकई वो बेकार ही थे जिनको हम पूछते रहे, कभी कहेंगे हम तो किसी की पूजा ही नहीं करते थे, जैसे इंसान की मत नहीं मारी जाती, हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि ये इतना ज्यादा कुरान में क्यों, ये आपका और इसका बताया गया, और इसीलिए नहीं हम कुरान पढ़ते, क्योंकि हम तो बड़ा घबरा जाते हैं ऐसी बातों से, और हम क्यों अल्लाह ताला ने इतने अजाबों का जिक्र, और बस इसमें तो और कुछ है ही नहीं, बस यही जहन्नुम के जिक्र ही। तो बात ये है, अगर आप गाड़ी लेकर जा रही हैं, गाड़ी में कहीं जा रही हैं, आपको कोई कहे कि देखिए आप ओवर स्पीडिंग ना करें, आगे इतना एक गहरा गड़ा है कि उसमें गाड़ियां उलट जाती हैं और लोग खत्म हो जाते हैं और तबाही तबाही हो जाती है, आप अपनी स्पीड जरा ध्यान से चलाइएगा, आप वहां पहुंच गई और वहां से वहां मुड़ जाइएगा, अगर आप नहीं मुड़ी तो आगे ऐसी ऐसी वो खाई है और उसका ऐसा ऐसा मंजर है, ताकि आप उस तरफ को ना जाएं और उससे बच जाएं, तो आप क्या कहेंगे? कितनी बुरी बात है कि ये हमें ऐसी बातें बता रहा है, और एक गड़े की बात बता रहा है और एक खाई की बात बता रहा है जो इतनी खौफनाक है, कितनी बुरी बात है कि इसने हमें डरा दिया। इसने आपके साथ अच्छाई की, भलाई की या बुराई कर दी, उसकी आप शुक्र गुजार होंगे या ये कहेंगे कि कितनी बुरी बुरी बातें बता के हमें डराने लगा है, हम तो मजे में जा रहे थे, इसने ऐसे ही हमें डरा दिया। तो जब वहां पे गिरोगे तो तभी फिर संभलोगे। कोई आपको अगर डरा रहा है या कोई आपको वॉर्न कर रहा है, बता रहा है, डराना तो इसमें क्या हुआ, कोई आपको बता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि देखो वहां पे गिर नहीं जाना, तो आप तो उसके एहसानमंद हो जाते, शुक्र है इसने हमें बता दिया, नहीं तो वाकई हमारी तो स्पीड ऐसी थी, हमने तो सीधे वहीं चले जाना था। कितने मशकूर होंगे फिर, क्यों ऐसी बात है कि कुरान में जब ये बताई जाती हैं बातें तो हम नाराज होते हैं, हमें गुस्सा आता है। लो ये इसमें तो क्या आग की बस बातें हैं, अजाबों की बस बातें बताई जा, हमें तो इनसे डर लगता है। तो हमारी तो यानी जिंदगी में क्यों थोड़ी भी जरा कहीं बेचैनी, कहीं कड़वाहट या हमारी आंख से एक आंसू भी क्यों टपक जाए। फिल्में ड्रामों के आगे तो आंसू बहा लेते हैं, वही कुरान पढ़ के ना आंसू टपके। हमारी देखिए हमारी तो जिंदगी में वैसे ही इतनी टेंशन है, अभी और कुरान पढ़ के हम एक टेंशन ले लें। आपको तो एहसान मंद होना चाहिए, आपको तो शुक्र गुजार होना चाहिए अपने रब का, क्योंकि जन्नत जहन्नुम तो बरहक है, वो तो है ही है। उस रब का एहसान है कि उसने हमें दुनिया में बता दिया, देखो इस रास्ते पर अगर चले ना तो एंड में ये है, ताकि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लें, ब्रेक लगा लें, एहतियात कर लें। वो ना बताता तो क्या कर सकते थे हम, अब वहां जाके पता चलता तो टू लेट हो चुका होता। तो बजाय इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के, यार अब तूने हमें दुनिया में रास्ता दिखा दिया और इतनी तफसील से इसलिए बताया, सिर्फ आग भी बताई जा सकती थी, ताकि इंसान वाकई इसको महसूस कर सके कि कोई मामूली बात नहीं है, कोई दुनिया में उंगली का जल जाने की तरह ये नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर उंगली जरा सी जल भी गई तो कोई नहीं, ये वो चीज नहीं है। इसको महसूस करो ताकि इंसान वाकई ये अपनी ढिटाई छोड़ दे। सोचेंगे आप इतनी खुली आयतें भी हैं फिर भी नहीं हम अपनी ढिटाई छोड़ते, फिर भी हम इतने ढीठ हैं कि फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ये ना खोल खोल के बयान करते तो बिल्कुल ही ना सुनते हम। ये तो उसका एहसान है, उसने इतनी क्लियर कट हर चीज बता दी, ये बय्यिनात है, खुली खुली बातें हैं। तो हम तो अभी भी नहीं संभल रहे, और ना बताई जाती तो फिर क्या हाल होता, या मुबहम रखी जाती कि इनके मिजाज पे ना कोई असर हो जाए, कहीं इनके मूड ना कहीं खराब हो जाए, इनको कोई जरा सी तकलीफ ना पहुंच जाए, इस वजह से इनसे बिल्कुल छुपा के रखा जाए। तो वो तो उल्टा हमारे लिए ही मुश्किल होती, हम तो आज नहीं मान के दे रहे तब क्या मानते। तो ये वो लोग हैं जो किबर में रहे ना, देखो उनके किबर ने उनको कहां तक पहुंचा दिया, अकड़े रहे थे ना दुनिया में। तो आप देखें कैसी जिल्लत है, जो किबर है, तकब्बुर है, बड़ा बनना, इसी वजह से बड़े बन बन के बड़ी बड़ी बातें और बड़ी। देखें कोई गरीब लोग बेचारे या जो ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे या बिल्कुल जिनको नहीं कुछ पता है, वो कुछ ज्यादा बहसे नहीं करते, ज्यादा बहसे हुई करते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। तो जब वो वहां पे जंजीरों में खींचे जाएंगे तो वो जो अपने आप को इज्जतदार समझा करते थे, अपनी बड़ाई के घमंड में रहते थे, अब देखो कैसे जिल्लत के तौक पहने हैं। जिन जो शोहरत याफ्ता थे, तो बड़ाई जो है इंसान को जेब नहीं देती, देखो कहां तक ले जाती है। क्योंकि इंसान जुर्रत करते करते बड़ा बनते बनते फिर वहां तक पहुंच जाता है कि फिर वो अल्लाह की आयात के ऊपर भी जुर्रत करने लगता है। ये है एंड उसका। अब बताएं अगर किसी की सारी जिंदगी वो बड़े कमाइयां करता रहा, सेविंग्स करता रहा, ऐशो आराम में रहा, रंग रलियां मनाता रहा, खुशगप्पियां करता रहा, दुनिया में मजे उड़ाता रहा, लेकिन अगर उसका एंड ये होना था तो कितना घाटे का सौदा है, कितना घाटा है। जो इंसान यहां पहुंच जाए जिस जगह का ये जिक्र है, तो उसके लिए तो ऐसे ही होगा जैसे उसने कभी कोई खुशी देखी ही नहीं। जैसे एक ऐसे इंसान को जिसने दुनिया में जिंदगी भर एक भी गम ना देखा हो, एक भी गम, ये हदीस में आता है, एक भी गम ना देखा हो, जब उसको जहन्नम में एक गौता दिला के लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कैसी गुजरी, तो वो कहेगा मैंने तो कभी आज तक कोई खुशी देखी ही नहीं, सारी खुशियां जो दुनिया में वो खुश रहा, जो सारे मजे किए, उसको ऐसे एक एक गौते से रफू चक्कर हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कहाँ है वो अब, किधर है भाई जिनको तुम शरीक बनाते थे अल्लाह के। तो वो अब हसरतों से ये कह रहे हैं, वो तो खो ही गए हमसे, वो तो नहीं हमें मिल रहे, वो तो दुनिया में ही रह गए। भाई देखो जिसके पीछे तुम अपने तुमने अपना वक्त बर्बाद किया, तुमने अपना माल लगाया, अब वो कहाँ है सारे, अब इसके हाथ में क्या रह गया, कुछ भी नहीं, ना वो वक्त वापसी का आ सकता है, ना माल आ सकता है, ना कोई और दुनिया की जो ऐशो आराम थे वो मिल सकते हैं वापस, अब खाली दामन है, ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई बचाने वाला है, ना कोई आहें सुनने वाला है, ना कोई चीखो पुरकार सुनने वाला है, ना कोई दर्द बांटने वाला है। इसीलिए कहेंगे ना दल्लू आना, गुम हो गए हमसे, हमने तो धोखा खा लिया, हम जब कोई बड़ा था ही नहीं, हमने ऐसे ही बड़ा समझा किसी को, किसी के पीछे लग गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं كذلك يضل الله الكافرين, इसी तरह अल्लाह ताला भटकाता है काफिरों को। तुमने अपनी दुनिया में गलत फैसले किए थे ना, कसूर तुम्हारा था, अल्लाह ताला ने तुमसे हक को कबूल करने की तौफीक ही छीन ली। फिर जब दिल स्याह हो जाते हैं तो फिर तौबा की तौफीक भी छिन जाती है। ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض, ये सब इसलिए है कि तुम दुनिया में खुशियां मनाया करते थे, जमीन में तुम बड़े मस्त हुआ करते थे। ये मैंने आपको बताया कि तफराहून खुशी के मानों में आता है, लेकिन इसके बाद जब तमराहून आ जाए ना, तो इसका माना होता है, तफराहून का माना होता है कि बड़े मस्त थे, मगन थे, डूबे हुए थे, और तमराहून फिर अकड़ने का माना हो जाता है। तुम तो जमीन में बड़े अकड़ अकड़ के चला करते थे, बिगैर हक, हालांकि तुम्हारा कोई हक नहीं था, अल्लाह की नेमतें तुम्हें मिली हुई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम इनके ऊपर अकड़ो, लेकिन तुम ऐसे उनमें मस्त हो गए और ऐसे अकड़ने लगे, वह बीमा कुन तुम तमरा हूं, और तुम इतराते थे। ये दो उनके जुर्म बताए गए कि तुम दुनिया में जो कुछ तुम पे मिला था ना, जो कुछ तुम्हें मिला था उस पर तुम इतराते थे, तकब्बुर किया करते थे, बड़ी चीज समझते थे खुद को। इंसान किस चीज पे इतराता है, वैसे उसके पास है क्या जिस पे वो इतराता है, अल्लाह के कुछ भी उसका नहीं है, कुछ भी तो उसका नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, लेकिन हम इतराते किस चीज पे, घरों पे, गाड़ियों पे, पैसे पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने इल्म पे, कौन सी चीज अपनी है, कुछ भी तो अपना नहीं है। ये घर बार हम देखते हैं दुनिया में ही लोगों के लुट जाते हैं, ये हुस्न जमाल जो है ये बुढ़ापे की झुरियां आ जाती हैं, या इंसान बीमार हो जाता है ये भी चला जाता है, दुनिया में ही अल्लाह ले लेता है। ये जो इल्म की वजह से इंसान बड़ा बन बन के अकड़ता है और बड़ा मस्त हो जाता है इसके अंदर, वो भी देखा है, जब बुढ़ापा आता है तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे बच्चा, अक्ल ही मारी जाती है उसकी। दुनिया में जो भी कुछ इंसान को मिला है, अगर वो पा के इंसान अपने रब को भूल जाता है, जैसे कारून भूल गया था, तो बजाय शुक्र अदा करने के, बजाय इंसान अल्लाह के आगे और झुक जाए, किसी भी नेमत को पा के जब इंसान मस्त हो जाता है उसमें ऐसा कि अल्लाह को ही भूल जाए, तो ये वो है कि बुरे मानों में फराह, खुश होना बुरा नहीं है, आपको ये नेमत आपको मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के आगे और झुक जाएं, खुश हों, उसके ऊपर खुशी करें, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ये ना हक खुश हुआ करते थे, यानी क्या मतलब हुआ ना हक खुश होने का, ये नेमत पाके अल्लाह को भूल जाते थे, और ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि इंसान नेमत पाए और फिर अल्लाह को याद रखे, ये कम लोग करते हैं। अक्सरियत का हाल क्या है, इधर नेमत मिली उधर अल्लाह को ही भूल गए, अब ना इबादत में दिल लगता है, ना नमाजों के लिए टाइम मिलता है, ना कुरान के लिए टाइम मिलता है, अब क्या करें, बिजी इतने हो गए। सबसे पहले नेमत मिलने के बाद हमारा हाल यही होता है कि अल्लाह ताला को पीछे कर देते हैं और नेमत में मगन हो जाते हैं, मस्त भी होते हैं और अकड़ते भी हैं। ये अकड़ना जो होता है ना वो सेकंड स्टेज होता है, पहले इतने मस्त हो जाते हैं उसमें, उसके बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता इतराना भी शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है, इठलाना शुरू हो जाता है कि मेरे पास ये चीज है। आप ये देख लें कि ये जहन्नुम में ले जाने वाली दो सिफात हैं। ये उनको कहा जाता है कि ये तुम्हें अजाब जालिकुम, ये बात यानी ये बात क्या, ये सजा जो है ये तुम्हें इस वजह से मिल रही है कि तुम जो जमीन में ना बड़े मस्त हुआ करते थे, तुम्हारी बड़ी मस्तियां थी, जो कुछ तुम्हें मिला था उसके ऊपर मस्त वही होता है जो बेचारा फकीर है, उसने क्या मस्त होना, जिसको नेमतें मिलती हैं। तो जब नेमतें मिली ना तुम तो उनको पा के ऐसे मगन हुए कि कुछ याद ही नहीं रहा कि अल्लाह का हक क्या है, इंसानों के हकूक क्या है, इतराने लग गए, दूसरों को हकीर समझने लग गए। आप देखिए इसकी मिसाल किसी और के लिए क्या, अपने लिए सबसे पहले हम ये सोचें, ये दो सिफात आज हमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, मगर क्या ये दो सिफात हम में तो नहीं है? बहुत सारी लड़कियां शादी से पहले बड़ी नमाजी परहेजगार, दुआएं हो रही हैं, मतलब शादी हो जाए पेरेंट्स भी दुआएं कर रहे हैं, शादी का दिन आता है तो क्या हो, अब रिश्ता अच्छा मिल गया, एक नेमत है जिसके लिए इतनी दुआएं हो रही थी, फिर क्या होता है जब वो दिन आ जाता है तो क्या होता है, कुछ अल्लाह को याद करना होता है? कैसी मस्ती होती है और कैसा इतराना होता है, खास तौर पे अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए किसी, और उसके बाद फिर क्या होता है, अब वहां सेटल हो गए, अच्छा घर मिल गया, आराम मिल गया, सारा कुछ भूल गए, क्या दीन तो क्या वो, कुछ भी नहीं याद। इसी तरह लोग औलाद के लिए दुआएं करते हैं, जब अल्लाह ताला औलाद दे देता है सारे अल्लाह के वादे जो उससे किए थे वो भूल गए, सब दीन सब कुछ भूल गया, औलाद में ही ऐसे मस्त हो गए और ऐसे वो कि मेरे तो अब बच्चे हो गए और मैं तो इस तरह और उसी के अंदर इतराना और उसी के अंदर के अल्लाह ने बेटा दे दिया तो बस उसके अंदर ही बहुत फूल गए। तो आप देखते हैं या किसी के पास पैसा आ जाता है, जब एकदम पैसा आया बिजनेस खूब चमक उठा, या हस्बैंड को प्रमोशन मिल गई किसी ऊंचे ओहदे पे लग गए, या जॉब बहुत अच्छी मिल गई, बड़ा घर मिल गया, कोई भी नेमत को आप सोचे, पहले छोटे घर में थे ठीक है वो दो कमरे का था तो कोई बात नहीं, अब उसके अंदर ही साफ सफाई करके बैठ गए, अब जो ही बड़ा घर मिला या पैसा बहुत आ गया, अब उसके बाद शॉपिंग ही खत्म नहीं होती, अब तो टाइम ही नहीं मिलता क्या करें, शॉपिंग जो इतनी करनी है, घर बड़ा है उसको सजाना भी है और पैसा भी है, फिर इतराना, उसके बाद अपनी शोखियां दिखाना, लोगों को बुलाना और उनके सामने अपनी नुमाइश करना, ये सब क्या है? तो तुम जमीन में ना हक, तुम्हारा हक नहीं था ये चीज कौन सी तुम्हारी अपनी थी, और यहाँ कौन सी तुम्हारे अपनी किसी काबिलियत पे मिली हुई थी? कारून ने तो कहा था ना मुझे तो मेरे अपनी मेहनत की वजह से मिला हुआ, अक्सर लोग यही समझते, हालांकि ये ना हक है, इतना ना हक खुश होना है, तुम अपने आप को समझते रहे कि तुम्हारी वजह से मिला, तो ये जो तुम्हारी इतराहट थी और जो तुम्हारी मस्ती थी इसकी वजह से आज तुम यहाँ पे पड़े हुए। लोग तो दुनिया में कहते हैं ना अब हम तो इतने मसरूफ हो गए हैं, असल में अब तो हमें वक्त ही नहीं मिलता, हम क्या करें, हमारे मशगले ही इतने, क्योंकि नेमतें जो इतनी ज्यादा हो गई, जितनी ज्यादा नेमतें हुई उतने होना क्या चाहिए था, तो देने वाला उतना ही ज्यादा उसके आगे सर झुकता जाता कि सर उठाने की नौबत ना आती, कैसे सर उठा सकते हैं, ऑलरेडी इतनी नेमतें मिली हुई और हमने जो मांगा था वो मजीद हमारा रब हमें देता जा रहा है, तो ये नेमतें भी ना टेस्ट होती है, आजमाइश होती है, तो बजाय इंसान का सर झुकता जाए झुकता जाए झुकता जाए, इतना झुक जाए वो सर उठाने के भी काबिल ना रहे, उल्टा क्या होता है, सर उठता जाता है उठता जाता है उठता जाता है और वो अकड़ जाता है बिल्कुल। आज की दुनिया में अगर देखें रब की तरफ तवज्जो ना करने का सबसे ज्यादा सबब क्या है, हमारे पास नेमते इतनी ज्यादा हैं कि हम उनमें मसरूफ हैं, उनमें मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं कि हम इसके बाहर देखें कि आखरत क्या है, उसके लिए कोई फिक्र करनी है, उसकी कोई तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ हमें अपनी जिंदगी को में कुछ अमल लेकर आना है। कहते हैं फुर्सत ही नहीं, मसरूफियत इतनी है, क्या करें, मशगले इतने हमारे, हमें कहाँ टाइम है। और वो सारी मसरूफियात अगर आप देखें तो किसके गिर्द घूमती हैं, उन नेमतों के जो अल्लाह ताला ने दी हुई। जायजा लें जरा, सारी मसरूफियात उन्हीं के गिर्द। अगर अल्लाह वो नेमतें ले ले, वो घर ही छीन ले तो क्या होगा, ना रहेगा घर, ना रहेगी मसरूफियत। अगर अल्लाह उन बच्चों को उठा ले, क्या रहेगा, कोई मसरूफियत नहीं। अगर अल्लाह ताला जो माल दौलत की रेल पेल है उसको उठा ले, क्या रहेगा, ना कोई शॉपिंग, ना कोई कुछ, फिर भी तो घर बैठोगे ना। लेकिन इंसान नेमतों में देखो कैसा मसरूफ हो जाता है कि जिस रब ने दी भी है और सस्टेन भी कर रहा है उनको, यानी उनको उसने बरकरार रखा हुआ, उसी से मुंह मोड़ लेते और डरते नहीं है कि अगर उसने छीन लिया तो क्या होगा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, अल्लाह नेमतों के जवाल से बचाना। ये नेमतें आज मिली नहीं तो उनका जवाल भी हो सकता है। किस चीज पे फिर इंसान को मान है और किस पे वो इतराता है और किस में मस्त है, फिर नाहक ही है ना, ये हक तो नहीं था तुम्हें। ऐसा ना हो कि सारी उम्र इन्हीं खेल खिलौनों में बिता के और फिर खुशियां मना के और मस्तियां करके और यहां से चले जाए। और फिर वहां कहा जाए कि तुम तो नाहक इतराते थे। तो इन चीजों को जरूर जहन में रखें कि ये नाहक पे इंसान का खुशियां मनाना, मगन रहना, ये मस्तियां, ये एक्टिविटीज, ये मसरूफियात, ये जिन नेमतों के गिर्द घूम रही हैं, उनमें मस्त रह जाना, ये नाहक है, ये तकब्बुर को जन्म देता है, ये इंसान का हक नहीं है, वो बड़ा नहीं बन सकता इन पे, वो इनमें मसरूफ रह के अल्लाह को नहीं भूल सकता। और खास तौर पे, आज तौर पे यहां पे जिसका जिक्र हो रहा है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करके, जो उसकी आयात में जिदाल करके, जो रसूल की मुखालफत करके, किताब में झगड़े करके, फिर भी वो इतराता फिर रहा है, फिर भी वो शोखियां मार रहा है, फिर वो अपने भटक जाने पे मुतमईन है, खुश है, अल्लाह की नाफरमानियां करके खुश है, तो ये ना हक है, ये खुशी ना हक है। फिर यही उसको वहां तक पहुंचा देगी जिस आग का जिक्र है। फिर कहा जाएगा उदखुलू अबवाबा जहन्नम, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजों में। कितने दरवाजे हैं जहन्नुम के? जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 हैं। तो कहा जाएगा इस जहन्नुम में दाखिल हो जाओ, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने के लिए यहां। फबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन, कितना बुरा ठिकाना है तकबर करने वालों का। ये देखो, ये है तकबर का अंजाम, तुम्हारे तकबर ने यहां पहुंचाया तुम्हें। तो जहन्नुम के दरवाजों का जिक्र हम सूरह हिजर में भी पढ़ चुके हैं कि हर दरवाजे के लिए ना लोग डिवाइडेड हैं कि किसने किस दरवाजे में से जाना है। जैसे एयरपोर्ट पे गेट्स होते हैं, कौन किस गेट से जाएगा तो किस जहाज में बैठेगा, तो गेट के आपको नंबर दे दिए जाते हैं कि यहाँ से इस गेट से आपने जाना है, यहाँ से एंटर होना है। इसी तरह यहाँ पे गेट्स हैं, इन गेट्स में से लोग जाएंगे और अपने अपने तबके में जाएंगे, अपने अपने दर्जे में जाएंगे, क्योंकि जहन्नुम के भी दर्जे हैं, हर एक दर्जे का अजाब मुख्तलिफ है। तो ये अपने अपने दर्जे में इस तरह से पहुंचेंगे, तकसीम शुदा लोग हैं।